ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਰ ਸਕੋ। ontario.ca/builds ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुड़ सिखाओ ना।
कोई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियाँ और 1 घर है, और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773।
अपनी कम्युनिटी का सब तो बड़ा, बढ़िया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर की पहचान बन चुके है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर का फर्नीचर बढ़िया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जाता सोडी फर्नीचर तो। 3 साल ले नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
पाकिस्तान पैसे भेजना अब हुआ आसान। यूज लेम्फाई फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफर्स। कनाडा से पाकिस्तान पैसे मिनटों में पहुंचते हैं, बराह रास्त जिसको आप भेजना चाहें। बेहतरीन एक्सचेंज रेट और पैसे पहुंचे मिनटों में। डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले और एप्पल स्टोर। कोड पाकिस्तान इस्तेमाल करने पे आपको मिले $10 का कैश बैक। अपने फोन से बराह रास्त बैंक अकाउंट में पैसे भेजना शुरू करें मिनटों में और बिना किसी फीस के। लेम्फाई।
770 AM ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੋਂ ਬਾਖਬਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ eawaz.com। ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ 6478724900।
ਚਾਂਦਨੀ
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 ਚਾਂਦਨੀ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ।
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਚੋਇਸ, ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ, sound system innovations, Chandni Banquet Hall.
30 years of hospitality experience, corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Sare package ka naam, Chandni Banquet Hall. Aaj hi call kijiye 437-218-8734, chandnihalls.ca. वेलकम बैक तमाम सामने को 770 AM टाइम पर। आप माइक इधर चला गया, बताओ यार, लोगों बैठते ही ना बस लोग नजर लगा देते हैं। इससे पहले सब कुछ सही चल रहा था, जैसे ही बस क्या बोले चले जनाब, कोई बात नहीं। वेलकम बैक तमाम सामाइन को जो हमें 770 AM डायल पर सुन रहे हैं और ई आवाज टीवी में देख रहे हैं। एक बार फिर खुश आमदीद, आपको और हमारा साथ तकरीबन 7:30 तक रहेगा। अभी अगले लम्हे जब इनका स्नैपचैट खत्म हो जाएगा तो प्रोग्राम में खट्टी मीठी खबरें लेकर आ जाएंगी। तकरीबन 7 बजे से पहले पहले खबरें खत्म कर लेंगे, मैंने उनको कहा बिल्कुल खत्म कर दें, उसके बाद लियाकत मलिक साहब अपना भूली बिसरी यादें प्रोग्राम पेश करेंगे। तो इससे पहले कि ये मुझे 4-5 अच्छी दुआएं दें, मैं इनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
WS सतरी अकाल, नमस्ते, हाउ आर यू?
आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा, कुछ बीमार शुमार लग रहे हो आज है?
अरे बीमार हमारे दुश्मन
यानी तुमने मुझे कहा है बीमार? जी
नहीं,
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 तुमने कहा है हमें तुम्हारे दुश्मन
यार। वो आप डायलॉग भूल गई थी
कौन सा,
कि सुल्तान को सिर्फ सुल्तान हरा सकता है तुम मरे हमारे, हम अपने ही दुश्मन खुद हैं।
खूब
कहने का मतलब ये है,
खट्टी
मीठी खबरें आप सुनाती हैं, खट्टी मीठी गोलियां हमने खा ली, गला खराब हो गया।
ओ
तो हमने कभी मस्त है ना कि आप स्टोरी बिहाइंड भी क्या है वो,
हेडलाइन
वो आप सुने बगैर स्टेटमेंट दे दिया।
हमने कहा कि जो उम्र है ना आमिर, ये चिली मिली खाने की नहीं है। हाँ, ये चिली मिली बच्चों के लिए, चिली मिली बच्चों के लिए बनाई गई है।
हमने
अपने आप को बच्चा समझना शुरू हो गया तो अब हम क्या कर सकते,
बच्चों के बाप तो है ना। तो वो गला पकड़ लिया और बस वो कहते थे सुल्तान को सुल्तान नहीं हरा सकता। वैसे हम अपने दुश्मन खुद है। ये है, इस ये था सिनेरियो ना, जिसको आप जज्बाती हो जाते
हो। तो अब जो है तुम दवाइयां खा रहे हो, कुछ आराम है?
आराम तो बस अल्लाह ने ही देना, इंसान अपनी कोशिश कर रहा है।
हाँ जी,
आहिस्ता आहिस्ता
आराम सिर्फ मरने के बाद
आराम मरने के बाद इस पे ये आपने एक वाहिद इतने 1947 से लेके आज मैं ये कह सकता हूँ।
हाँ, हाँ।
आपने वो बात की है जो मेरे दिल को छू गई।
बोल रहे हो 1947 नहीं 1945 सेकंड वर्ल्ड वॉर।
45 में तो पैदा होती नहीं, बोलना शुरू कर सकती ना। दो साल के बाद बच्चा बोलना शुरू करता है ना, तो इसलिए मैंने 1947 से आप बोलना शुरू किया।
अच्छा अच्छा,
दो साल के बाद।
अच्छा,
कम अज कम बच्चा दो साल ढाई साल की उम्र में बोल लेता है।
इतना डम बच्चा कि दो साल के बाद बोलना।
ये बात जो आपने की ना कि आराम जो है वो मरने के बाद है, ये आपकी बात मुझे दिल को छू गई है।
दिल है
बस है, अभी तो है।
मुझे तो खबरें मिली है दिल की जगह एक पत्थर है।
नहीं नहीं, ऐसे कैसे पत्थर है?
पत्थर नहीं है।
नो नो,
अच्छा अच्छा, दिल दिल है
अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा अच्छा, दिल तो बच्चा है।
थोड़ा बहुत चिली मिली इसलिए खा ली,
इसीलिए खा लिया
और गला खराब कर लिया
और गला खराब कर बैठे।
तो दो तीन दफा खांसी हुई तो माजरा तमाम सामाइन के लिए, मुझसे खांसी नहीं रोकी गई, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। माफ कर देंगे आप, माफ करने में ही
है आप।
सवाली
yes.
नहीं नहीं, वो आरफा पा मुझे एक दवाई देकर गई है, लो नाम भूल गया।
भाई जान आपको सवाली देकर गई है।
सुदूर नहीं,
सुदूरी सुदूरी जबरदस्त है
भाई। वो मैं कहता हूँ कि जब मैंने उस
मिरेकल मेडिसिन
सुदूरी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ आरफा, आप सुन रहे होंगे मुझे, सुदूरी
है, सुदूरी है, सुदूरी है
भाई।
लेकिन अगर आप सवालीन भी अगर खाते हैं तो भी आपका गला कुल कला जाता है। आपको पता है कभी कभी वो मुलठी वाला पान भी कहते हैं खाने के लिए।
अच्छा अच्छा,
हाँ वो भी आप खाएं, उससे भी गला ठीक हो जाता है। मगर अब तो ये तो
अब उन्होंने और एक और चीज दी, उसका नाम मुझे नहीं पता, वो शायद अदरक टाइप की कोई चीज
के रूट्स हैं, अदरक के रूट्स हैं।
और आई होप कि अगर मैं कल जिंदा आ गया तो मैं वो खा लिया।
नहीं वो, क्योंकि आप कच्चा ऐसे खा नहीं सकते।
नहीं, खाना पड़ेगा आपको।
अच्छा।
ये डॉक्टर ने कहा है। अच्छा। आपको खाना पड़ेगा।
और खा नहीं सकते।
मैंने थोड़ी सी खाने की अभी कोशिश की थी जब मैं ऊपर बैठा हुआ था।
हाँ।
मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर धमाके होना शुरू हो गए,
बस आप सुदूरी पिए।
फिर मैंने सुदूरी पी ली,
बस बस बस।
उसको पीने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोई जो है वो वोडका पी लिया। टन
अच्छा
खराटे। अच्छा, मैं अच्छा, अल्लाह अच्छा, क्या अच्छा। आरफा पापा ने जो देसी नुस्खा बताया है। हाँ, काफी टाइम के बाद हुए। अल्लाह माँ को जिंदा नसीब करे।
हाँ,
वो ये चीजें बताती थी मुझे। अच्छा।
हाँ,
और वो एक और आता था जो शानदार
शानदार, तो जुकाम के लिए होता है, गला खराब जुकाम के लिए,
नजर जुकाम के लिए,
गला खराब के लिए सुदूरी।
सुदूरी
यस,
बस ये आप भी सुदूरी
पिए।
और मैं
यानी पाकिस्तान की ये जो मेडिसिन है ना, ये मिरेकल मेडिसिन है। आपको शदीद दर्द है ना किसी जगह के ऊपर, आप विंटो जीनो लगा लें, वाह आप देखो
आपका कैसे बढ़ेगा। मार्केटिंग ना करें, छोड़
हाँ, इसी तरह आप सुदूरी पी लें, आपका गले का दर्द खराब जो है, जो दर्द है वो
बिल्कुल
ठीक हो
मैं
जाएगा।
तो वो बोतल मेरी टेबल पर ही रखी है,
बिल्कुल
एक चम्मच में पी चुका,
लेकिन उसको दवाई समझ के पिए,
शरबत समझ के,
उसको कुछ और समझ के मत पिए।
नहीं थोड़ी सी तो पी ली है,
थोड़ी
तो नहीं की है, हमें तो बता के दिए, हमें तो बाकायदा हैंड ओवर की गई है, तो हम जितनी भी पिए हमने कुछ और नहीं किया।
अच्छा अच्छा,
हमें तो हमारी मैनेजमेंट ने भाई अपने हाथों से, प्यार भरे हाथों से, दिल दुआओं के साथ ये हैंड ओवर किया, जा बच्चा तू सहतियाब हो जा। तो अब हम तो पिए जा रहे हैं।
अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, आप जो है वो थोड़ी थोड़ी पिए और आप फिर से जाके पिए, जब तक मैं थोड़ी सी खरबें दे
सुना।
ठीक है जी। अच्छा जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बादशाह जी। राजा बादशाह ने बड़ी डंडी मारी है जी हमारे साथ, हमको दिए $400 का छूट और आमिर को दिया है $1775 का छूट। ठीक है जी, लेकिन आपने उनके सर पे जाके बैठ जाना है। अगर आपके पास भी दो गाड़ियां और एक घर है और आपने उनको बोलना है जी जैसा डील आपने आमिर को दिया है वैसा मेरे को भी दो, ठीक है जी, तो ये आपको देंगे। इनका नंबर है 6472903773 एंड जनाब पायल ज्वेलर्स, जबरदस्त किस्म के इनके पास ज्वेलरी है, दुबई सिंगापुर इंडिया पाकिस्तान से लाएं। कोई भी आपका छोटा बड़ा इवेंट है तो आप प्लीज इनके पास पायल ज्वेलर्स के पास जाएं और ये आपको जी बड़ी प्यारी किस्म की जो है डील्स देंगे। और आरफा जी का आप नाम ले लो, ठीक है, फिर तो जो है बड़े असलम भाई खुश होकर आपको जो है बड़ी अच्छी वो डील देंगे, ठीक है, क्योंकि असलम भाई जो है आफाफ जी के भाई है। तो आप इनको कॉल भी कर सकते हैं एट 9057907879, ठीक है जी। एंड जनाब जो है चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल, जबरदस्त किस्म के आप बड़े छोटे सारे इवेंट्स करा सकते हैं यहाँ पे। और वो कहते हैं जी हमें 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 32 रूम लग्जरी होटल है, हर तरह के इवेंट के लिए सूटेबल है। इनको भी आप कॉल कर लें एट 6479653823, ठीक है जी। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि जी अब चूंकि फॉल सेशन शुरू होने वाला है तो ट्रूडो साहब जो हैं उनसे उनको तो छोड़ नहीं रहे हैं ना, अब जब से ये वैसे भी जगमीत सिंह साहब के साथ अलायंस खत्म हुई है। तो आज फिर रिपोर्टर्स ने पूछा, उन्होंने कहा जी दसो हूं की करोगे तुम। उन्होंने कहा जी कि मैं तो वेट नहीं कर सक रहा पीयर पॉलियाफ साहब का सामना करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में। मुझे पता है कि वो जो क्वेश्चन करेंगे मैं उनके लिए तैयार हूं बिल्कुल, तो मैं वेट कर रहा हूं कि उनके सामने जाऊं। लेकिन जाहिर है कि ये जो इनके बीच में फिर अब जो कुछ भी बातचीत वहां पर होगी वो जरा टेंसी उसमें माहौल में होगी। और आपको पता ही है कि पीएफ पॉलियाफ साहब ने वैसे भी कहा है कि हम नो कॉन्फिडेंस मूव यहां पर लाना चाहते हैं। ट्रूडो साहब ने कहा जी कि हम जो कैनेडियंस के लिए सर्विसेज हैं और कैनेडियंस में इन्वेस्टमेंट है उसमें हम बिलीव करते हैं, जबकि कंजर्वेटिव जो हैं उनको लगता है कि अगर प्रोग्राम्स में कट करेंगे तो फिर ही वो जो है ग्रोथ शो कर सकते हैं। हम कट्स पे बिलीव नहीं करते, हम उनमें ज्यादा पैसे यानी इन्वेस्ट करने के ऊपर बिलीव करते हैं। लेकिन जाहिर है कि अभी जो दो बाय इलेक्शंस आने वाले हैं उसमें भी और जो नेक्स्ट ईयर का इलेक्शन आएगा उसमें भी लोगों को ये चॉइस जो है बनाने की जरूरत है। पीएफ पॉलियाफ साहब का वो कहते हैं जी पर्सपेक्टिव ही कट्स के ऊपर बिलीव करता है टू मूव फॉरवर्ड। और लेकिन हमें पता है कि जो कंट्रीज कॉन्फिडेंट होती हैं वो अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करती हैं, अपने लोगों के में इन्वेस्ट करती हैं और अपने वर्कर्स में इन्वेस्ट करती हैं, और इस तरह से फिर जो है वो आगे जाती हैं और हम भी उसी चीज के ऊपर बिलीव करते हैं। एनडीपी के पास भी जो है ये जो आने वाला फॉल सीजन है ये काफी सख्त रहेगा, क्योंकि बाय इलेक्शंस आने वाले हैं दो जगहों पे, एक विनीपेग में और एक जो है वो मॉन्ट्रियल जो है वहां पे आने वाला है। तो ये जो विनीपेग का राइडिंग है एल्मवुड ट्रांसकोना, यहां पे ये वैसे एनडीपी का काफी स्ट्रांग होल्ड रहा है। यहां पे 11 में से 10 दफा ये लोग जीते हैं सिंस 1988। फॉर्मर एनडीपी के जो एमपी हैं फ्रैंकोआ बॉयसन, उनका कहना है कि अगर पार्टी ये होल्ड ना कर सकी तो सिंह साहब के ऊपर भी बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे कि भाई अलायंस भी आपने लिबरल पार्टी की सोच ली छोड़ दी और आपकी अपनी खुद की भी जो लीडरशिप है उसके ऊपर सवाल आ सकते हैं। तो ये बड़ा हार्ड टाइम होएगा इनके लिए। कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो जाहिर है कि ये राइडिंग जो है एल्मवुड ट्रांसकोना की कोना की ये लेने की कोशिश करेंगे। कंजर्वेटिव जो लीडर हैं कॉलिन रेनॉल्ड्स, उन्होंने साइंस भी अपने जो हैं वो लगाने शुरू कर दिए हैं और उसके ऊपर सिंह और साहब की और ट्रूडो साहब की तस्वीरें लगाई हैं और जगमीत सिंह साहब के तो नीचे लिखा हुआ है सेल आउट सिंह। एनडीपी जो है वो यहां पे अपना मिस कर रही है इनकम्बेंट जो इनका लीडर था डैनियल ब्लैकी, क्योंकि उन्होंने रिजाइन कर लिया था अर्लियर दिस ईयर। उन्होंने कहा था जी कि मैं प्रोविंशियल एनडीपी के साथ काम करूंगा और ये सीट जो थी सिंस 2015 इन्होंने होल्ड की हुई थी। इनके जो वालिद साहब थे बिल ब्लैकी वो भी एमपी थे यहां से फ्रॉम 1988 से 2008 से, तकरीबन 2.5 डेकेड से ये सीट जो है ये एनडीपी के पास रही है। लेकिन जिम मेलोवी फ्रॉम 2008 टू 2011 एंड कंजर्वेटिव लॉरेंस स्टोइड फ्रॉम 2011-2015 जो हैं ये भी यहां पे जो है रूल कर चुके हैं, यानी कि ये भी इधर से जीत चुके हैं। विनीपेग का जो बाय इलेक्शन है उसी दिन है जबकि बाय इलेक्शन है लसेल एमरल्ड वर्डम के अंदर, और जो एनडीपी है वो चाहता है कि ये जीते। अब ये जो मॉन्ट्रियल की सीट है ये लिबरल सीट है, लेकिन एनडीपी चाहता है कि यहां से जीते। और सिंह साहब जो है वो देखेंगे कैंपेन करते हुए अपने लोकल एनडीपी कैंडिडेट क्रेग सॉव के साथ यहां पे, और जो इस सीट है ये लिबरल्स की है इंक्लूडिंग जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पॉल मार्टिन थे वो भी यहां से ही थे। इसके अलावा सिर्फ दो दफा ऐसे एक्सेप्शन हुई है कि जो लिबरल्स नहीं जीते हैं इन द 1980s, जब एक दफा ब्रायन मिलरूनी जो थे वो जीते थे, वो पीसी से थे, और फिर उसके बाद जो क्यूबेक के एनडीपी कैंडिडेट्स थे फिर उन्होंने टेक ओवर भी किया था इन 2011। तो उसके अलावा जो है ये लिबरल्स थे। तो अब ये काफी जो है ये चल पड़ा है इनके बीच में कि भाई अब हम जो है कौन यहां से किस सीट से जीतता है। एयर कनाडा जो है उसने जी फेडरल गवर्नमेंट से कहा है कि आप इंटरवीन करें कि ये टॉक्स के अंदर, क्योंकि जो पायलट्स हैं वो हमारी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि पायलट्स ने कहा है कि एज अर्ली एज सेप्टेम्बर 18 हम जो है स्ट्राइक पे जाएंगे। स्पोक्स पर्सन जो है एयर कनाडा के क्रिस्टोफर हैनिबल, उन्होंने कहा है कि जी एयर कनाडा कमिटेड है यूनियन के साथ डील करने के लिए, लेकिन वो बहुत ही अनरीजनेबल डिमांड्स कर रहे हैं। एयर कनाडा जो है और वो और उसकी जो लो कॉस्ट सब्सिडरी है जो एयर कनाडा रूज, वो ऑपरेट करते हैं तकरीबन 670 फ्लाइट्स पर डे, तो ये शट डाउन अगर होएगा तो ये अफेक्ट करेगा 110,000 पैसेंजर्स को डेली और इसके अलावा फ्रेट कैरिजेस को भी। फेडरल लेबर मिनिस्टर जो है स्टीफन मैकिनन, उन्होंने कहा है कि भाई आप लोग खुद आपस में ये डिस्प्यूट्स सॉल्व करो, हालांकि उन्होंने बहुत सारे डिस्प्यूट्स जो है वो सॉल्व किए हैं। लास्ट मंथ उन्होंने इंटरव्यून किया था 24 आवर्स टू एंड स्टॉपेज एट टू लार्जेस्ट राइवल कंपनीज कैनेडा पैसिफिक कैंसर सिटी एंड कैनेडा नेशनल रेलवेज। 100 बिजनेस ग्रुप्स जो हैं उन्होंने अर्ज किया था इनको अब के जी आप अब इंटरवीन करें और ये जो स्ट्राइक है इसको एयर कैनेडा की इसको रोकें। इनके ऑफिस ने कहा जी कि हम चाहते हैं कि ये दोनों साइड टेबल पे बैठें और अब बातचीत के जरिए अपने डिफरेंसेस को खत्म करें। एयर कैनेडा के 5,400 जो पायलट्स हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे वेजेस जो हैं वो हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं एट मेजर यूएस करियर्स लाइक यूनाइटेड एयरलाइंस उनके जैसे होने चाहिए। हैनिबल ने कहा कि हमने इनको 30% वेज इंक्रीज का ऑफर किया था लेकिन ये उसको मानने को तैयार नहीं है और बहुत ही अनरीजनेबल जो है ये बात कर रहे हैं, तो जिसकी की वजह से टॉक्स जो है स्टॉल्ड हैं। ऐसे है। आपको हमने एक दफा पूरी एक स्टोरी मैंने बताई थी कि ये जो ब्लडिंग करते थे, ये जो ऑस्ट्रेलियन जो गए थे फौजी अफगानिस्तान के अंदर और सिर्फ इसलिए कि उनका निशाना पक्का हो अफगान्स को मारते थे, ये काफी हैरोइंग रिपोर्ट आई थी और उसके ऊपर फिर आज ऑस्ट्रेलिया ने बड़े अरसे से जो ये बिठाई हुई थी एक जो इन्वेस्टिगेशन बिठाई हुई थी, तो कि ये जी 2005 से 2016 के बीच में इन लोगों ने क्या क्या कुछ किया है उसके रिजल्ट्स आ जाए हैं। उसके ऊपर इन्होंने कहा है जी कि तकरीबन 10 से कम वैसे तो कमांडर्स हैं लेकिन उनको गिल्टी पाया गया है फॉर अलेज्ड वॉर क्राइम्स एंड अनलॉफुल कंडक्ट, और उसके ऊपर इनके इन्होंने कहा जी कि हम इनके मेडल्स इनसे वापस ले लेंगे, ये डिजर्व नहीं करते हैं कि ये हमारे कमांडर्स के तौर पर रहे। डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड मॉल्स जो हैं उन्होंने कहा जी कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये इसलिए ताकि जो कि भी कोई पास्ट में हमसे गलतियां हुई हैं उनको ठीक किया जाए और उनके नाम लेकिन रिलीज नहीं किए जाएंगे। इन्होंने कहा जी कि 11 ईयर पीरियड जो था उसके अंदर हमने ये सारी जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर हमें पता चला है कि ऑस्ट्रेलियन जो फोर्सेस थे उन्होंने अनलॉफुली मारे हैं 39 सिविलियंस एंड प्रिजनर्स इन अफगानिस्तान, क्योंकि इनकी जो अलीट स्पेशल फोर्सेज थी उसके अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिसमें कि वो अपने निशाने सीधा करना चाहते थे। 2020 की ये जो फाइंडिंग थी इसने फिर कहा कि ये जो एक सब कल्चर ऑफ एलिटिज्म जो है इसके अंदर है और जो है ये फिर इसके अंदर जो रिपोर्ट बनाई है 143 रिकमेंडेशंस दी गई थी। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ये इसमें से मोस्ट ऑफ द जो रिकमेंडेशंस हैं वो बिल्कुल हमने उसको रिव्यू किया है और हमने उसको एडॉप्ट किया है और एक जो कॉम्पेंसेशन स्कीम है और कल्चर रिफॉर्म्स हैं उनको लाने की जरूरत है। आपको बताइए कुछ दिन पहले फॉर्मर SAS कॉर्पोरल विक्टोरिया क्रॉस रेसिपिएंट थे बेन रॉबर्ट स्मिथ, उनके ऊपर भी इस तरह के एलिगेशन आए थे कि उन्होंने 4 अफगान प्रिजनर्स को मारा था, तो उनको भी जो है सारे जो बेनिफिट्स थे उनके ऊपर जो ये डेफेमेशन केस था वो जब लगाया गया था तो वो केस भी लूज कर गए थे और वो बेनिफिट्स भी उनसे ले लिए थे लेकिन उनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाए गए थे, तो ये उसी चीज की एक कड़ी है। आफ्टर सितंबर 11, 2001 ये जो अटैक्स हैं उसके बाद 26,000 ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री मैन जो है उनको अलॉन्ग साइड यूएस में जो एलाइड फोर्सेस थी उनके साथ अफगानिस्तान में लगाया था अगेंस्ट तालिबान एंड अलकायदा और दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स जो थे वहां पे, तो उसके ऊपर फिर इन्होंने वहां जाके जो है काफी सिर्फ टेररिस्टों को नहीं खत्म कर रहे थे बाकी जो एलिजली सिविलियंस थे उनके ऊपर भी किया था। इसके साथ साथ आज ऑस्ट्रेलिया में काफी ये बड़ा दिन भी इस तरह रहा कि 1200 के करीब गाजा वॉर प्रोटेस्टर्स जो है उन्होंने पुलिस के साथ क्लैश किया और उन्होंने पिकेट किया यहां पे लैंड फोर्सेस 2024 एक्सपोजिशन की जो एक एग्जीबिशन चल रही थी मेलबर्न में और इन अरेस्ट इन क्लैशेस के अंदर फिर काफी जो है ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने इन लोगों को अरेस्ट किया, तो काफी हैपनिंग आज प्लेस थी ऑस्ट्रेलिया जो थी इसमें काफी कुछ चल रहा था। फॉक्स न्यूज की अब ये खबर आई है, अब ये कितनी ऑथेंटिक है वो तो आप खुद ही सोचेंगे, लेकिन ये नई रिपोर्ट एक जो फॉक्स न्यूज की आई है ये शो करती है कि चाइना जो है वो यूएस का जो यूथ है उसको बिल्कुल बेकार करता चला जा रहा है, क्योंकि वहां से फेंटेनॉल जो है वो बेशुमार जो है यहां पे आ रहा है। हेरिटेज फाउंडेशन की एक जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक होल्डिंग चाइना और मेक्सिको अकाउंटेबल जो है उसके मुताबिक यूएस के अंदर जो फेंटेनॉल क्राइसिस है वो डायरेक्टली लिंक्ड है इन ड्रग्स के साथ जो कि मेक्सिको से आती हैं, लेकिन बेसिकली वो चाइना से चलती हैं। ये इस रिपोर्ट का कहना है, अलेज किया है उसने। इसके अंदर 75,000 अमेरिकन्स जो हैं इस ड्रग ओवरडोज की वजह से 2023 में मरे थे, और वो कहते हैं जी कि तकरीबन 1500 अमेरिकन्स जो हैं पर वीक मरते रहे हैं इन ड्रग्स की वजह से। ऑफिशियल्स कहते हैं कि ये जो इलिसिट फेंटेनॉल है ये क्रिएट तो मेक्सिको में की जाती है, लेकिन दे यूज चाइनीज प्रिकर्सर्स, और इसके अंदर ये जो फिर ड्रग कार्टल्स हैं मेक्सिको से वो फिर इसको अमेरिका में लेकर आते हैं। ये जो ड्रग्स होती हैं इसके अंदर बहुत सारा दूसरा भी मिक्सचर होता है। बच्चे जो होते हैं वो समझते हैं कि ये सिर्फ कोकेन या हेरोइन है, लेकिन उसके अंदर फेंटेनॉल भी होती है और वो ज्यादा ले लेते हैं और उनसे उनकी डेथ्स होती हैं। ये जो इसको सारी चीज को रोकने के लिए अमेरिका काम कर रहा है, ये ओपीओइड इसको एपिडेमिक ये लोग कह रहे हैं, उसके ऊपर अमेरिका के 2020 में सिर्फ जो है 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स जो थे वो लगे थे, और ये कॉस्ट जो है ये कमोबेश ऐसी ही है अभी तक भी। तो ये जो है काफी खतरे की घंटी है अमेरिका के लिए, यानी लग ये रहा है कि जैसे किसी जमाने में ओपियम ईटर्स कहा जाता था चाइना को, तो चाइना अब जो है वो अब शायद अलेजली जो अलेज किया इस रिपोर्ट ने, शायद अब वो वही टेक्टिक्स यूज कर रहा है अमरीका के खिलाफ भी। तो अब इसमें पता नहीं है कितनी सच्चाई है, बहरहाल अमरीका ने ये इल्जाम लगाया। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब जो हैं जी वो थ्री नेशंस की यात्रा के ऊपर निकले हुए थे, अपनी यात्रा उन्होंने रैप अप कर ली है, और यूके फोकस्ड यूरोपियन टूर था ये इनका, और ये पोलैंड में आके अब खत्म हुआ है। ब्लिंकन साहब जो है वॉर्सो में पहुंचे, एक दिन इससे पहले इन्होंने कीव में स्पेंड किया, उसके बाद जो है ये यूके में थे, यूके में ही इनकी जो है फिर मुलाकातें जो है फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी के साथ हुई थी, और इन्होंने प्लेज किया दोनों लीडर्स ने कि हम जो है यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। इसी तरह पोलैंड जो कि नेटो का मेंबर है और उसका बॉर्डर भी यूक्रेन के साथ लगता है, उन्होंने भी कहा है कि हम भी यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। ब्लिंकन और लैमी ने कहा है कि यूके और यूएस ने प्लेज किए हैं जी और पैसे, 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स एडिशनल एड जो है वो यूक्रेन को दी जाएगी। ये जो इनका कीव का विजिट था उसके अंदर इन्होंने ये अनाउंसमेंट की। ब्लिंकन साहब ने इसके अलावा कहा जी कि अमेरिका 700 मिलियन यूएस डॉलर्स ह्यूमैनिटेरियन एड देगा। लैमी साहब ने कहा जी कि यूके जो है वो प्रोवाइड करेगा 782 मिलियन डॉलर्स इन असिस्टेंस एंड लोन गारंटीज। इसके अलावा बाइडन साहब जो है उन्होंने भी अब अलाउ किया है यूक्रेन को कि जो यूएस प्रोवाइडेड मिसाइल्स हैं अब वो यूज कर सकते हैं रशिया के अंदर, और लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये इतने डिस्टेंस पे आपको यूज कर सकते हैं इतना और उससे ज्यादा आगे फायर नहीं करना है, क्योंकि उसके आगे जो है फिर वो सिविलियन पॉपुलेशन है और उसको नुकसान हो सकता है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं जी उनकी मुलाकातें चाइनीज प्रीमियर ली कियांग के साथ हुई हैं, जो कि सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं इनके साथ अब टॉक्स करने के लिए। रियाद जो है वो ली साहब का पहला स्टॉप है गल्फ ट्रिप का, और उसके बाद फिर वो यूएई को भी जाएंगे। आपको पता ही है कि चाइना बहुत अरसे से, हालांकि ये सारी बेल्ट जो है गल्फ की ये अमेरिकन एलायज हैं, लेकिन चाइना अपना जो है यहां पे इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। वो कहते हैं जी कि हम एमबीएस के साथ डिस्कस करेंगे बायोलैटरल कोऑपरेशन इन द फील्ड्स ऑफ पॉलिटिक्स सिक्योरिटी कॉमर्स एनर्जी इन्वेस्टमेंट कल्चर टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू सऊदी प्रेस एजेंसी। सऊदी अरेबिया जो है वो इनके साथ काफी अब जो है डीप कर रहा है टाइज चाइना के साथ भी, क्योंकि चाइना भी अपने डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो तेज करता जा रहा है। चाइना जो है इट अकाउंट्स फॉर अ क्वार्टर ऑफ क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट क्रूड एक्सपोर्टर है। इससे पहले ली साहब की मुलाकातें जो हैं वो सऊदी अरेबिया में जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के सिलसिले की थी, बिजनेस जो लीडर्स हैं यहां के बड़े बड़े उनसे भी, यानी कि बड़े बड़े जो सऊदी बिजनेसमैन हैं उनके साथ भी यहां पे हुई हैं। चाइना इसके अलावा जो है आपको पता ही है कि उसने बड़ा मेजर रोल प्ले किया था कि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो लड़ाई थी उसको खत्म करा के दोस्ती कराई थी, और अभी तक ये इसराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट में बिल्कुल जो है न्यूट्रल है, बल्कि कहता है कि जी टू स्टेट जो है सोल्यूशन होना चाहिए, हालांकि उसकी ताल्लुकात जो है इसराइल के साथ भी बड़े अच्छे हैं। चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो कहती है जी कि हम मिडल ईस्ट को रोप इन करना चाहते हैं, हमारा जो बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है जो कि उन्होंने पाकिस्तान में शुरू किया है और उसमें वो और लोगों को शामिल करना चाहते हैं। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान भी बहुत ज्यादा डिजायरस है कि चाइनीज जो कंपनियां हैं वो इनके जो सऊदी का जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं लाइक द फ्यूचरिस्टिक नियोम डेजर्ट सिटी उसके अंदर आके ये इन्वेस्टमेंट करें, तो दोनों के लिए जो है वो विन विन सिचुएशन है और इसीलिए जो है ये इसके अंदर जो है वो एक दूसरे के साथ हेल्प कर सकते हैं। आज एक बहुत बड़ी जो खबर है यूरोपियन यूनियन की वो ये है कि यूरोपियन एंटी ट्रस्ट चीफ जो हैं मार्गरेट वेस्टेगर, उन्होंने आज दोनों केसेस जो उन्होंने किए थे एप्पल और गूगल के अगेंस्ट वो उन्होंने विन किए हैं, और यूरोप की जो टॉप कोर्ट है उसने कहा कि ये जो इसका क्रैक डाउन था इनके अगेंस्ट ये बिल्कुल ठीक था, क्योंकि इनके जो कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस हैं वो बाकी जितने भी छोटे इनके होते हैं जो कंपेटिटर्स उनको ये मार देते हैं, विच इज नॉट रियली राइट। यूरोपियन कमीशन ने इन 2016 ऑर्डर किया था एप्पल को टू पे 14.4 बिलियन बैक इन टैक्सेस टू आयरलैंड, और उसमें उन्होंने कहा था जी कि आयरलैंड का जो टैक्स रूलिंग था उसके अंदर बहुत सारी इन्होंने फायदे उठाए थे और एप्पल को जो अनलॉफुल एड दी गई थी आयरलैंड की तरफ से वो जो थी उसमें इन्होंने बेतहाशा पैसा बनाया और इनको प्रेफरेंशियल जो है ट्रीटमेंट भी दिया गया था जिसकी वजह से रेजिडेंट कंपनीज जो थी वो बिल्कुल मर गई थी। एप्पल ने कहा कि जी हमने पे किया है इनको 577 मिलियन यूएस डॉलर्स इन टैक्सेस विच इज 12.5% ऑफ प्रॉफिट जो इसमें से जनरेट किए थे वो जो थे देवर इन लाइन विद द टैक्स लॉज ऑफ आयरलैंड। इसके अलावा कोर्ट ने आज जो है वो केस अल्फाबेट जो कि एक यूनिट है गूगल का उसके भी अगेंस्ट जो है इनके फेवर में दिया है वेस्टगर के, और उन्होंने कहा जी कि ये 2.67 बिलियन का जो फाइन है आपको लगाया जाएगा। वेस्टगर जो है पिछले 7 साल से ये एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस जो है इनकी ये बड़ी अमेरिकन कंपनियों की उसके खिलाफ जो है काम कर रही है। गूगल ने कहा जी कि वी आर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड बाय दीज डिसीजंस ऑफ द यूरोपियन कमीशन। ये है जी जगत। अच्छा जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय डॉक्टर फियाज कुरैशी। डॉक्टर फियाज कुरैशी जो है हर तरह की डेंटिस्ट्री की सर्विसेज आपको देते हैं। इनके 3 क्लिनिक्स हैं, 2 मिसिसागा में, 1 स्कार्बरो में, तो आप इनको कॉल कर लें सर्विसेज के लिए। इनका नंबर है मिसिसागा में 9052325678 और स्कार्बरो में 4167579999। और जनाब अगर आपको पैहे अगर आपके पास पैहे हैं और आपने पाकिस्तान भेजने हैं तो लेम्फाई जो है उसको आप डाउनलोड कर लें अपने एंड्रॉयड और एप्पल के ऊपर, और $250 भेजेंगे तो आपको $30 कैशबैक मिलेंगे। इसके अलावा 0 ट्रांसफर फी है और फटोफट मिनटों सेकेंटों में पैहे जो है वो उधर पहुंच जाते हैं, तो आप प्लीज ये जो है अपने प्यारों को फटोफट पैहे लेम्फाई के थ्रू भेजें। अच्छा जनाब, पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो है उन्होंने इमरान खान साहब का जो इक्विटल प्ली था इन 190 पाउंड केस उसको आज जो है रिजेक्ट किया है, और उन्होंने आज आर्ग्यूमेंट्स जो है दोनों साइडों से सुने थे एट डियाला जेल, और उसके बाद उन्होंने ये जो एक्विटल की जो पिटीशन थी ये उन्होंने डिसमिस की। उन्होंने जो है अब डेट फिक्स की थी इनके साथ, उन्होंने कहा था कि जी जो ये केस सितंबर 10 को एडजर्न किया गया है गया था उसको आज हम सुनेंगे, यानी कि आज की यानी कि 12 तारीख को हम सुनेंगे, तो आज उसी सिलसिले में ये सुन रहे थे। इमरान खान साहब और उनकी बेगम जो हैं बुशरा बीबी साहिबा वो आज कोर्ट के सामने आई जिस और ये जो हियरिंग थी ये कंडक्ट कर रहे थे जज नासिर जावेद राणा अडियाला जेल में, और इसके साथ साथ जो है और भी बातें सामने आई जिसमें कि कहा गया कि शायद इमरान खान साहब को का मिलिट्री ट्रायल होएगा मई 9 के मेहम में। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस सिलसिले में फेडरल गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन मांगी है। इनकी जो हियरिंग है आज जो प्ली डाली थी खान साहब ने अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन September 3rd, उसमें जस्टिस मियां गुल औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान एक सिविलियन है और मिलिट्री ट्रायल जो है वो उनके लिए भी सोर्स ऑफ कंसर्न है और कोर्ट के लिए भी है। इमरान खान ने ये प्ली उस वक्त डाली थी जब डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ और लॉ मिनिस्टर आजम तारर ने स्टेटमेंट्स दी थी इस सिलसिले में, तो उसी सिलसिले में फिर ये मियां औरंगजेब गुल जो है बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि ये इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो रेफर उन्होंने किया था उसके अंदर इमरान खान साहब ने DGISPR के भी, तो ये सारी मिली जुली जो खबरें आ रही हैं ISPR से भी, ख्वाजा आसिफ की भी, आजम नजीर तारड़ की भी, तो ये क्या कहती हैं, हमें इसमें एक क्लियर स्टैंस चाहिए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। अगर इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल अंडर कंसिडरेशन है तो क्यों है और कैसे है, और अगर तो नहीं है तो फिर जो इन्होंने प्ली डाली है वो इनइफेक्टिव है, और अगर है तो फिर कोर्ट इसको सुनेगा पहले और डिसाइड करेगा, क्योंकि ये सिविलियन है और सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट जो है कोर्ट में डिसीजंस होने ट्रायल्स होने चाहिए कि नहीं, इसका लॉ जो है वो ऑलरेडी मुल्क में मौजूद है। तो सुप्रीम कोर्ट का उस पर डिसीजन आया हुआ है, उसको आप रेफर करें, उन्होंने जस्टिस मियां गुल औरंगजेब ने ये आज कहा। आजाद जम्मू और कश्मीर की जो लीडरशिप है जी, उन्होंने जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के जो कमेंट्स आए थे थोड़े दिन पहले, उसके ऊपर जो है बड़ा एतराज किया है। राजनाथ सिंह साहब जो हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान जो है कश्मीरियों के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा है और आजाद कश्मीर के कश्मीरियों को चाहिए कि वो भी पाकिस्तान को छोड़ के जो हमारा कश्मीर है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर उसके साथ जो है अपने आप को मिला लें और आपके राइट्स और सबको जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा। आजाद जम्मू कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं चौधरी अनवारुल हक, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा जो है सख्त बयान देते हुए कहा, उन्होंने कहा जी कि ये राम बन के मौके पे जो ये बात कर रहे थे तो हमें पता है कि ये कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये जो कश्मीरी हैं ये पाकिस्तान के अंदर फॉरेनर्स हैं। आजाद जम्मू और कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की शेमलेसनेस होनी चाहिए एक बंदे में इस तरह का स्टेटमेंट देने के लिए, जिस तरह का स्टेटमेंट राजनाथ सिंह साहब ने दिया है, कोई शर्म हया उनके अंदर नहीं है जिस वक्त वो ये दे रहे थे। और हमें पता है कि आपका जो हिंदू फनेटिक बीजेपी जो है वो क्या कर रहे हैं कश्मीरियों के साथ, आपके तो अपने हाथ खून से रंगे हुए हैं LOC के यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ, अपनी तरफ भी और हमारी तरफ भी, आप इनोसेंट कश्मीरियों के ऊपर अटैक्स करके फौरन उनको मार रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि इंडिया ने ना सिर्फ कश्मीरियों के फंडामेंटल राइट्स और एंड राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को खत्म किया है बल्कि उसके ऊपर कब्जा जमाए बैठे हैं और हजारों ही इनोसेंट सिविलियंस को मार चुके हैं। ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो इन्होंने की हैं जिसके अंदर मैस रेप्स, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1947 ऑनवर्ड्स स्पेशली सिंस 1989। उन्होंने कहा जी कि ये जो 8,000 अननेम्ड मैस ग्रेव्स मिली थी ऑक्यूपाइड वैली में ये शो करती हैं इंडियंस की ब्रूटैलिटी और उसकी फोर्सेस की। चौधरी साहब ने कहा जी कि इंडिया जो है उसने कश्मीर को एक ओपन एयर प्रिजन बनाया हुआ है जहां के 24 घंटे सिटीजन्स जो हैं वो एक फियर में रहते हैं और उनसे उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स और आइडेंटिटी तक उन्होंने खींच ली है। तो उन्होंने कहा इंडियन गवर्नमेंट को कि आप कश्मीरियों की रिस्पेक्ट करें बल्कि अपनी जो आपकी ये जो ऑक्यूपेशन फोर्सेज हैं इनको वापस बुलाएं और कश्मीरियों को अपना पॉलिटिकल फ्यूचर खुद डिसाइड करने दें इन अकॉर्डेंस विद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। उन्होंने कहा जी कि इंडियन जो मिलिट्री है उसका एक मर्डरस व्यू है कश्मीरियों के साथ बोथ साइड्स ऑफ LOC पे। पाकिस्तान आर्मी अलबत्ता इस तरह से लोगों के साथ एक्ट नहीं करती, वो लोगों की प्रोटेक्टर है। इसके अलावा उन्होंने अर्ज किया इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि इंडिया जो है उसके ये जो जुल्म है कश्मीरियों के ऊपर उसका फौरन नोटिस ले और एक फैसिलिटेट करे UN स्पॉन्सर्ड प्लेबिसाइट इन दिस डिस्प्यूटेड रीजन। तो दोनों तरफ से जनाब चीजें काफी गर्म रही हैं। पाकिस्तान के अंदर FBR जो है उसने कहा है जी कि हमको बहुत ही ड्रास्टिक टैक्सेशन के जो है वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि ये जो टैक्स इवेडर्स हैं इनको निपटा इनके साथ जा सके, जैसे कि उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने पड़ेंगे और वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, वो गाड़ियां नहीं खरीद सकते और उनकी इलेक्ट्रिसिटी और गैस कनेक्शन जो है उनको भी काटना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी कि ये जो शॉर्टफॉल आया है फर्स्ट क्वार्टर में अंडर IMF प्रोग्राम ऑफ 7 बिलियन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, उसके होते हुए ये जो फंड्स जमा करना है वो हमारा काम है। 3.2 मिलियन रिटेलर्स जो हैं अभी तक उनको नहीं लाया जा सका है FBR के टैक्स नेट के अंदर। उन्होंने कहा जी कि 2 मिलियन नॉन फाइलर्स हैं और जो ये टोटल हैं 6 million रिटर्न फाइलर्स हैं. उन्होंने कहा जी इसके लिए एक मिनी बजट लाने की जरूरत है जिसमें कि एक बिल फॉर अमेंडिंग टैक्स लॉज जो है वो लाया जाए या कि एक ऑर्डिनेंस जो है वो लेकर आया जाए. उन्होंने कहा जी कि वो लोग जो इवेड करेंगे टैक्स पेमेंट्स ऑफ 0.5 मिलियन से 1 मिलियन तक, उनका पावर और गैस जो था वो डिस्कनेक्ट किया था लेकिन उसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ था. और वो कहते हैं जी कि जो इसलिए फिर ज्यादा सख्त कदम उठाने की जरूरत है, जैसे कि ये उन्होंने बयान किए हैं कि उनके बैंक अकाउंट्स वगैरह फ्रीज करें और वो गाड़ियां और घर वगैरह ना खरीद सकें, तो शायद ये लोग जो हैं अपने टैक्स देने लगे. पाकिस्तान में पावर डिवीजन जो है उसने अब कहा है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको रिलीफ दी जा रही है और 2 रुपीज पर यूनिट इन इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कम देखेंगे इन सितंबर कर्टसी ऑफ फ्यूल एडजस्टमेंट्स. उन्होंने कहा जी पावर प्राइसेस अकॉर्डिंग टू द डिवीजन स्टेटमेंट, उन्होंने कहा जी दे हैव फॉलन बाय 2.93 पर यूनिट ड्यू टू फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स इन बिल्स फॉर ऑन गोइंग मंथ, यानी कि सितंबर के महीने में. एग्रीकल्चर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स जो कि यूज करते हैं 300 यूनिट्स तक, उनको जो है रिलीफ मिलेगी 2.19 रुपीज पर यूनिट की सितंबर के बिल में और 2.65 पर यूनिट टैक्स इंक्लूसिव दूसरों लोगों को. आपको पता ही है कि आईपीपीज के ऊपर काफी जो है शोर मचा था और 3 दिन पहले मैंने आपको सारी आईपीपीज की स्टोरी सुनाई भी थी और कि उसके ऊपर क्या शोर हंगामा किया जा रहा है. तो वो कह रहे हैं जी कि ये सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी जो है जिसके के टैरिफ्स भी हाई ना हो वैसा हमको रीजन के अंदर जो है वो इनिशिएटिव लेने की जरूरत है. और ये जो राइजिंग टैरिफ्स हैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी में, उसकी वजह से बेशुमार जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनको नुकसान हुआ है. एट द ट्यून ऑफ 350 बिलियन की ये जो इकोनॉमी है इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान हुआ है और इन्फ्लेशन जो है वो भी बहुत ज्यादा ऊपर चली गई थी. लेकिन गवर्नमेंट जो है वो अब कोशिश कर रही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट्स और लाइन लॉसेज होते हैं इसको कम किया जाए. जुलाई के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने जो है शहबाज शरीफ साहब ने 50 बिलियन रुपीज का पैकेज दिया था फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स और उन्होंने कहा था कि टैरिफ्स भी इंक्रीज नहीं किए जाएंगे टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स यूजिंग 200 यूनिट्स फॉर 2 मंथ्स जुलाई अगस्त एंड सेप्टेम्बर. तो वो कहते हैं जी कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और भी हम ऐसे करते रहेंगे. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसने आज कहा है जी कि हम जो ओवरनाइट लेंडिंग रेट्स हैं उसके अंदर बहुत सारी कमी लेकर आए हैं बाय 200 PBS टू 17.5% फ्रॉम एग्जिस्टिंग 9.5%. ये डिटेल्स आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एक स्टेटमेंट में दी. उन्होंने कहा उसकी वजह से जो है वो इन्फ्लेशन नीचे आएगी और जो IB है 2 महीनों में उसकी वजह से जो है ये भी नीचे आए हैं. पॉलिसी रेट जो है वो इफेक्टिव है फ्रॉम सितंबर 13. उन्होंने कहा जी कि इसकी वजह से कोर इन्फ्लेशन भी नीचे आई है इन द लास्ट 2 मंथ्स और SPP की जो रिमिटेंसेस की जो इनफ्लो है और जो इम्प्रूव्ड एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैं उसका ये सारा इफेक्ट हुआ है और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी नीचे आया है 0.2 बिलियन से इन जुलाई के महीने में. और वो कहते हैं जी कि ये ट्रेंड जो है इट कंटिन्यूड इन अगस्त एज वेल. फिस्कल कंसोलिडेशन जो है पिछले कुछ सालों में जो की गई है उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है नीचे आ रही है और ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आई है. उन्होंने कहा जी कि GDP इम्प्रूव किया है डिक्लाइनिंग फ्रॉम 75% एट एंड जून इन 2023 टू 67.2% एट जून एंड इन 2024. तो ओवरऑल वो कह रहे हैं जी कि थोड़े थोड़े होले होले जो है कुछ स्ट्रेंथ आती जा रही है इकोनॉमी के अंदर. हिंदुस्तान के अंदर जनाब कुछ हालात ठीक नहीं हैं क्योंकि वहां पे भी काफी मारामारी चल रही है. आपको पता ही है कई हफ्ते हो गए हैं वेस्ट बंगाल के अंदर वो जो एक जूनियर डॉक्टर का रेप और मर्डर किया गया था उसकी वजह से अभी तक डॉक्टर्स जो हैं वो सड़कों के ऊपर हैं वेस्ट बंगाल में. एफर्ट की जा रही है कि ये जो एक डेडलॉक आ गया है हमारी दीदी ममता बैनर्जी और स्टूडेंट्स के डॉक्टर्स के बीच में इसको खत्म किया जाए, लेकिन ये बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा इसलिए कि डॉक्टर्स हैव रिफ्यूज टू एंगेज इन टॉक्स विद चीफ मिनिस्टर ममता बैनर्जी. वो कह रहे हैं जी कि आपके साथ क्लोज डोर्स में हम बिल्कुल कोई मीटिंग नहीं करेंगे, ये लाइव स्ट्रीम की जाए जो हमारी मीटिंग आपके साथ चल रही है. वो कहते हैं जी कि हमारी कॉलीग जो थी ये फीमेल जो कि जिसको के रेप और मर्डर करके मारा गया मर्डर किया गया था एट RG कर मेडिकल कॉलेज, उस सिलसिले में जो है हम आपके साथ दो टोक बात करना चाहते हैं. ममता बैनर्जी ने कहा इस वाकये का मुझे भी बहुत ज्यादा अफसोस है लेकिन हम ये ट्रांसपेरेंट रखेंगे, ये सारा कुछ रिकॉर्ड करेंगे लेकिन इसको जो है वो लाइव स्ट्रीम मत किया जाए. वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी जो है मनोज पंत, उन्होंने आज रिपोर्टर्स को कहा कि ये पॉसिबल नहीं है कि लाइव स्ट्रीम चीजों को किया जाए, लेकिन हमने उनको कहा है कि हम ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट करेंगे बिकॉज देर आर अ फ्यू लिमिटेशंस। लेकिन जी डॉक्टर्स मानने को तैयार नहीं है। बैनर्जी जो है उनको बुलाया फिर डॉक्टर्स ने बातचीत करने के लिए। सोचो जी आमिर साहब, चीफ मिनिस्टर वेट करती थी स्टूडेंट्स का, ये डॉक्टर्स का एक घंटा, और अगर वो आए नहीं जी, डॉक्टर्स नहीं आए, वो दिखाई नहीं दिए। इसके ऊपर जो है चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा जी मैं दो घंटे से वेट करती रही और ये लोग आए नहीं है, मैं इनको बता रही हूं कि मैं इन सबको माफ कर दूंगी क्योंकि मैं बड़ी हूं, बड़ों का काम होता है छोटों को माफ करना, और ये जो क्राइसिस लोगों को जो ये फेस कर रहे हैं डॉक्टर्स के ना होने की वजह से, मैं उनसे भी माफी मांगती हूं, डॉक्टर से भी माफी मांगती हूं, मुझे खुद भी इस चीज का खेद है, मैं इस चीज को भी सॉल्व करना चाहती हूं। और उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन भी करने को तैयार हूं, मैं आप लोगों से माफी मांगती हूं, लेकिन आप आके बात तो करें, लेकिन डॉक्टर्स बात ही करने को तैयार नहीं है। अब जबकि ये एक जो है कौम की बेटी उसके साथ ऐसा हुआ है, आज एक और बहुत ही शर्मनाक वाकया यूपी के अंदर भी हुआ है कि एक औरत का बिल्कुल नंगा धड़ जो था वो हाईवे जो है गुजेनी के एरिया में कानपुर में वो फेंका हुआ मिला, जिसमें कि उस औरत का सर धड़ से अलहदा किया गया था। लोकल्स जो थे उनको ये बॉडी इसका मिला था और उसके ऊपर कपड़े बिल्कुल नहीं थे, तो उन्होंने उसके ऊपर एक चादर डाला और फिर उसको पुलिस को बुलाई, तो पुलिस ने भी एक इन्वेस्टिगेशन जो है इसके ऊपर बिठाई है। तो कॉन्स्टेंटली जनाब ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये ऐसे चलते जा रहे हैं। और जनाब क्लैशेस जो है मणिपुर के अंदर भी बेतहाशा शुरू हो गए हैं फिर से, और उसके रहते हुए गवर्नमेंट ने 5 दिन का इंटरनेट का सस्पेंशन किया है और कर्फ्यू भी लगाया है 3 स्टेट्स के अंदर। कांग्रेस ने कहा है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को कि वो इंटरवीन करें और करेक्टिव मेजर्स लें ताकि लॉ एंड ऑर्डर को यहां पे रिस्टोर किया जा सके। कांग्रेस के एमपी फ्रॉम इनर मणिपुर बिमोल अक्योजम जो है उन्होंने अमित शाह साहब को लिखा है और उन्होंने कहा जी कि एक इन्वेस्टिगेशन बिठाओ कि अगर इसके अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स, फॉरेन एलिमेंट्स या इलिसिट ड्रग माफिया इन्वॉल्व है, जो कि कॉन्स्टेंटली मणिपुर के अंदर अनरेस्ट बिठाए हुए हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज अनाउंस किया कि जी तमाम गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस स्कूल्स जो हैं बंद रहेंगे स्टेट के अंदर, क्योंकि हंगामे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। अभी जो लेटेस्ट और जो फ्रेश वायलेंस जो है वो इरप्ट हुई है मणिपुर के अंदर, वो इनके जिरीबैम डिस्ट्रिक्ट में हुई है, जिसके के अंदर लड़ाई झगड़ों में 6 लोगों की फिर से डेथ हो गई है। सेंटर जो है उसने फिर से 2 फ्रेश CRPF की बटालियंस जो हैं वो यहां पे लाई हैं, जिसके के अंदर 2000 पर्सनल हैं फॉर सिक्योरिटी। 92 डिफरेंट जगहों के ऊपर चेक पोस्ट बनाई गई हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखा जा सके। पुलिस ने 129 लोगों को वायलेशंस के लिए डिटेन किया इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। अभी तक 225 लोगों की डेथ हो चुकी है एंड 60,000 पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड सिंस द क्लैशेस बिगैन। इसके अलावा साथ साथ जो है इंडिया के दूसरे इलाकों में भी जो है बहुत सारे क्लैशेस रहे मुसलमानों के, और गणेश का जो प्रोसेशन चल रहा था उसमें खासतौर पर कर्नाटका के अंदर मॉब्स जो हैं जो हिंदू मॉब्स थे उन्होंने टारगेट किया बहुत सारी मुस्लिम शॉप्स को और व्हीकल्स को, और कुछ को तो आग भी लगाई। पुलिस ने जो है इस सिलसिले में 52 लोगों को अरेस्ट किया है। सेक्शन 144 इसके अलावा इम्पोज किया है नागा मंगला ताल्लुक के एरिया में ऑफ मंडिया डिस्ट्रिक्ट में। तो काफी जो है अपहीवल चल रहा है हिंदुस्तान में। और जनाब सिकंदर जो कि एक ह्यूज प्रोजेक्ट है जिसके के अंदर आपको सल्लू भाई नजर आएंगे, जिन्होंने कि कोलैबोरेट किया है फॉर द फर्स्ट टाइम विद द साउथ के जो डायरेक्टर हैं AR मुरुगदोस के साथ, उसमें जो है उसमें लेकिन जो साउथ की ब्यूटीज हैं वो भी आपको नजर आएंगी। इसमें सबसे पहले जो रोप इन किया गया था रश्मिका मंदाना को किया गया था एज अ लीडिंग लेडी, लेकिन आज की खबर जो है वो ये आ रही है कि काजल अग्रवाल को भी इस फिल्म के अंदर रोल रोप इन किया गया है। काजल अग्रवाल ने आज अपने इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर बहुत सारे सनफ्लावर्स का एक बुके जो है वो डाला और उसके ऊपर लिखा कैप्शन किया सिकंदर Day 1, यानी कि ये भी इन्होंने भी शूटिंग जो है अब शुरू कर दी है सल्लू भाई के साथ सिकंदर की। तो लग रहा है कि ये भी बहुत बड़ी जो है मूवी बनने वाली है। और जनाब आने वाली है दिवाली जल्द ही, और दिवाली के ऊपर जो है लोग बड़े परेशान हैं इंडिया में, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट क्लैशेस जो है बॉलीवुड की मूवीज का वो होएगा। एक तो कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 आएगी और इसका क्लैश रहेगा अजय देवगन की जो फिल्म आ रही है जो रोहित शेट्टी बना रहे हैं सिंघम अगेन उसके साथ। तो इससे पहले कुछ दिन पहले ऐसी सजेशन आ रही थी कि शायद रोहित शेट्टी जो हैं अपनी रिलीज डेट जो हैं वो चेंज करेंगे, लेकिन अभी पता चला है कि नहीं, रोहित शेट्टी भी दिवाली के ऊपर ही अपनी फिल्म को रिलीज करेंगे। अब लोग इंडिया में बड़े परेशान हैं कि भैया हम कौन सी फिल्म देखें इस दिवाली पे, तो भैया दोनों ही देख लो, है जी, हम तो कहते हैं दोनों ही देख लो। और जनाब चल रहा था केबीसी 16 का एक नया एपिसोड और उसमें इंटरव्यू ले रहे थे बिग बी पद्मश्री अवार्डीज डॉक्टर अभय और डॉक्टर रानी बंग को, और उन्होंने कहा जी कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है रानी जी, अमिताभ ने पूछा, तो उन्होंने रानी जी ने कहा कि जी मेरे तो फेवरेट सिंगर माइकल जैक्सन थे। तो फिर उन्होंने कहा कि अमिताभ जी हमें पता चला है कि आपकी भी मुलाकातें जो हैं वो माइकल जैक्सन से रहीं, तो उसका जरा किस्सा बताएं। उन्होंने कहा अरे मुलाकात क्या थी, हम तो न्यूयॉर्क के एक होटल में ठहरे हुए थे, एक दिन हमारे दरवाजे के ऊपर किसी ने नॉक दिया, हमने खोला तो सामने खड़े थे माइकल जैक्सन जो है वो किंग ऑफ पॉप। कहते हैं मुझे तो आंखों पर यकीन नहीं आया, मैं फेंट करने वाला था। तो उन्होंने बहुत ही पोलाइटली मेरे से पूछा कि जी ये कमरा आपका है, तो मैंने कहा हाँ जी ये कमरा मेरा है। तो माइकल जैक्सन ने रियलाइज किया कि हाँ मिस्टेकनली वो एक गलत रूम में आ गए हैं, और फिर वो अपने रूम की तरफ जाने लगे, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने एक आदमी को भेजा और उन्होंने कहा जी कि मैंने जिसके कमरे पे गलती से नॉक किया था उसको बुलाओ, उसके साथ बैठ के हम चाय वाय पियेंगे। तो कहते हैं फिर मैं उनके साथ बैठा, उनके साथ चाय वाय पिया, और मैं आई फाउंड आउट कि वो इतने बड़े स्टार होने के बावजूद इनक्रेडिबली हम्बल थे। तो वाह जी वाह, क्या बात है भाईजान, माइकल जैक्सन से मिले आप, आपको आपके तो जो हैं वो प्राण ऊपर चले गए हैं जी, क्या बात है। माइकल जैक्सन से मिलना तो एक ड्रीम था सारों का, है ना। और जनाब पाकिस्तान हॉकी के लिए अच्छी खबरें, पाकिस्तान गॉट 5-1 विक्ट्री ओवर चाइना एंड एज अ रिजल्ट इट हैज मेड अ प्लेस फॉर इटसेल्फ इन सेमी फाइनल्स ऑफ एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024। इसके अंदर जो स्टार प्लेयर्स थे एक दफा से फिर नदीम अहमद और हन्नान शाहिद रहे, जिन्होंने दो दो गोल्स किए और अब्दुल रहमान ने एक, तो 5-1 से पाकिस्तान ये मैच भी जीता। इससे पहले भी आपको पता है वो अपने साउथ कोरिया, जापान और जो है मलेशिया से मैचेस जीता है। अब सैटरडे को इसका मैच है अपने हमसाए इंडिया के साथ। इंडिया की टीम अभी तक टूर्नामेंट में अनबीटन चल रही है, तो अब जो है पता नहीं है कि ये अब जो है जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो बहरहाल जी पाकिस्तान जो है इट इज डूइंग वेल इन दिस टूर्नामेंट। मैं जरा सॉरी अगर मैं जज्बात में ज्यादा मैंने बोल दिया, पाकिस्तान ने दो अपने जो मैचेस थे वो ड्रॉ किए थे और फिर वो जीता था, यानी साउथ कोरिया और मलेशिया से ड्रॉ था और फिर जापान से जीता था और फिर आज जो है चाइना से जीता है, ठीक है जी। तो ऐसा है। और जनाब आज आई है एक बड़ी दिल दुखाने वाली रिपोर्ट आईसीसी की। ये भैया क्या कर रहे हो, ये पाकिस्तान को इतना दुख काय को दे रहे हो आप, है थोड़ा पाकिस्तान को भी प्यार दिखाओ। जैसे हम मोदी जी को कहते हैं मोदी जी, एस जयशंकर साहब थोड़ा पाकिस्तान को प्यार दिखाओ, भैया आपका छोटा भाई है, आप बड़े भाई हो, जरा दिल बड़ा करो, बड़े भाई हो तो दिल भी बड़ा करो, पाकिस्तान को थोड़ा प्यार। उसी तरह आज हम आईसीसी को भी कह रहे हैं भाईजान आप क्रिकेट के किंग बने हुए और किंग का इतना खराब दिल है, पाकिस्तान को आप इतना ज्यादा अनफेयरली ट्रीट कर रहे हो। आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, ये है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आईसीसी जो है पता चला है कि इंडियन इकोनॉमी को मैसिव बूस्ट दिया गया है बाय गिविंग 1.39 बिलियन डॉलर्स जो इन्होंने वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया था 2023 में अपने मुल्क में, और इसमें सबसे ज्यादा पैसे इन्होंने कमाए थे इंडिया ने। इंडिया पाकिस्तान का जो मैच अहमदाबाद में था उसमें तो आईसीसी को भी ये पता है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं तो ये सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं, और जो है दूसरे मैचेस में इतना नहीं कमाया जाता है, लेकिन फिर भी आईसीसी जो है लायंस शेयर जो है वो हिंदुस्तान को देती है, यानी कि 38.5% इंडिया को दिया जाता है, और सोचो जरा पाकिस्तान को कितना दिया जाता है, ओनली 5.75%। 38% से ज्यादा उसको और पाकिस्तान को 5%, भाई जान व्हाट इज दिस है जी। तो वो कहते हैं जी वैसे तो आईसीसी के जो मेन पैसे आते हैं वो ब्रॉडकास्ट राइट से, गेट मनी से और जो टाइटल स्पॉन्सर्स और दूसरे जो सोर्सेज होते हैं उनसे होते हैं, लेकिन जाहिर है कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस भी क्योंकि बहुत ज्यादा धांसू होते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा पैसे जो हैं वो कमाए जाते हैं वर्ल्ड कप्स के अंदर। लास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडियन टीवी चैनल एक जिसने के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लिए थे एक्सक्लूसिवली टू कवर इंडिया पाकिस्तान मैचेस इन वर्ल्ड कप फॉर $3 billion फॉर 2023-27। इसके साथ साथ ये भी रिपोर्ट किया गया है जी कि ये जो है आईसीसी जो है इस जो इसकी $600 million की इनकम थी उसमें से उन्होंने इंडिया को $230 million दिए, इंग्लैंड को $41.33 million दिए, ऑस्ट्रेलिया को $37.54 million और पाकिस्तान को सिर्फ $34.51 million। वाट इज दिस आमिर, वाट इज दिस 230 मिलियन उसको और पाकिस्तान को खाली 34 मिलियन, ये क्या हो रहा है? ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये मेरी कटी आईसीसी के साथ, ठीक है जी। और जनाब एब्सोल्युटली मेरी आखिरी न्यूज जो है वो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के बारे में। नहीं, उन्होंने हॉकी खेलनी नहीं शुरू की। नहीं नहीं, आपने गलत समझा, मुझे पहले बोलने का मौका दें हैं। उन्होंने मुलाकातें की हैं एथलीट्स के साथ, ओके, बहुत सारे एथलीट्स के साथ उन्होंने मुलाकातें की और उन्होंने उनकी बड़ी तारीफ की और उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में हम अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। उन्होंने डिफरेंट मीटिंग्स डिफरेंट फेडरेशंस के साथ की, एक उनकी मीटिंग जो थी वो थी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम के साथ, दूसरे उनके दूसरे ऑफिस बेयरर्स एथलीट्स और फिर एक पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन जो है उनके साथ भी थी। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा एसेट है वो उसके टैलेंटेड यूथ हैं, इसके हम विश करते हैं कि ये बच्चे खेलें और अपने मुल्क के लिए जो है वो लॉरल्स लेकर आए, ये बहुत जबरदस्त टैलेंट है और पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर है। उन्होंने कहा जी कि जिस वक्त मैं पंजाब का चीफ मिनिस्टर था तो मैंने एस्टैब्लिश किया था पाकिस्तान स्पोर्ट्स एंडाउमेंट फंड और मैंने पूरी कोशिश की थी कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से डिफरेंट जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको ये पैसे दिए जाएं और उनको चुना भी जाए बड़े जो है ट्रांसपेरेंट तरीके में। इसके अलावा ये जो स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम जो थी उस जो पाकिस्तान को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था अभी नॉर्वे कप 2024 में, उन्होंने कहा जी कि मैं बड़ा खुश हूं आपकी जो है परफॉर्मेंस से वहां पे और अब हम फुटबॉल के लिए पाकिस्तान के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान अनवेल करेंगे टू प्रोमोट दिस गेम। ठीक है जी आमिर सर,
तो ये थी आपकी आज की खटी मीठी खबरें
खरबें।
तो सुकून हो गया, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया।
नहीं, ब्लड प्रेशर तो हाई कर दिया ना आईसीसी ने, मेरा सारे पैसे जो इंडिया को दे दिए।
पैसे आपको नहीं दे रहे?
नहीं, हमको नहीं दे रहे हैं, पाकिस्तान
को दे रहा है ना, तो आईएमएफ दे रहा है।
ओ अच्छा अच्छा अच्छा,
100 अरब रुपए कितने? 100 अरब
7 बिलियन। हाँ
7 बिलियन।
हाँ हाँ, ठीक, डॉलर
तो और क्या चाहिए अब। हाँ, कितने अभी 200 के लिए कुछ के लिए रो रही है।
हाँ ना,
आपको $1 billion दिए हैं।
हाँ ढेर सारे, अब अभी हमने वापस नहीं करना।
नहीं, मैं तो समझा आपने जो है वो अब तक 4 डाले खरीद लिए होंगे।
हाँ,
और आपने दो
वो तो सिंध गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डाल दी है ना कि कितनी हमको पता नहीं 134 गाड़ियां चाहिए एसीज के लिए। वो तो वो जैसे पैसा आएगा वो गाड़ियां खरीदेंगे, डाले खरीदेंगे।
पैसे हाँ? आने चाहिए बस।
हाँ, वो पैसे आने चाहिए, जैसे ही आएंगे हम डाले खरीदेंगे।
नहीं, एडवांस भी ले लिए।
अच्छा, पहले से ही ले लिए।
हाँ,
ओ वेरी गुड। ओ मुझे $1 million कोई दे नहीं रहा, वरना मैं भी फौरन डाले जो है उसकी मैं बुकिंग करा दूं, डाला मैं खरीद लूंगी।
वो आपको फिर वैसा बनना पड़ता है ना, आपको अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी पड़ती है। ऐसी यार कोई लोन थोड़ी देता, बैंक भी लोन नहीं देता आपको अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री
अच्छी। नहीं नहीं, सानू तो बैंक भी 50,000 क्वेश्चन पूछता है, ये कैसे और ये कैसे और ये कैसे, और जरदारी साहब को शरीफ साहब को पूछते ही नहीं है ये बैंकों वाले।
हमें मुझे भी नहीं पूछते कभी भी बैंक, नहीं तो शरीफ आदमी है।
अच्छा,
कभी बैंक सवाल नहीं करता मुझसे।
बैंक आपको बताना चाहिए, शरीफ आदमी को ही क्वेश्चन करता है।
नहीं हमें, मुझे तो नहीं करता।
आप जैसे जो है, हाँ तो आप जैसों को नहीं करता ना, आप जैसों को तो नहीं करता, आप जैसों को तो लोन देता है बैंक। हम जैसे शरीफ लोगों को और गरीब लोगों को कहाँ देता है?
फ्री बांट देते, कहते ले जाओ लोन यार।
अच्छा, ओ माय गॉड,
मैं कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए मुझे, कोई लाइन ऑफ क्रेडिट नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए।
हो
बस आप अपने पास रखिए,
ये हमें चाहिए भी नहीं, वापस चाहिए नहीं, लौटाने भी नहीं है हमको।
जब लेने ही नहीं तो लौटाएंगे कहां? बारह जनाब शाजिया जी की जो खबरें हैं ना वो आपको जो है वाइटामिन डी का काम कर रही है।
अच्छा, और क्यों रंग काला होता जा रहा है?
अच्छा, वाइटामिन डी से रंग काला हो जाता
है? हाँ, जब आप धूप में बैठते हैं, धूप आपको वाइटामिन डी देता है ना, तो फिर उसका उससे रंग भी तो काला होता है ना।
यार ये गोरों से पूछे इसकी कीमत क्या होती
है। हाँ, हमें हमने पूछी हुई है, गोरे जो वहां पे बैठ के मिडिल ईस्ट में अपने रंग काले कर रहे होते थे ना, तो हम उनसे पूछते थे कि पाईजान ये आप अपना रंग काला क्यों कर रहे हो, वो कह रहे हम टैन ला रहे हैं। तो मैंने कहा पाईजान फिर आप समझ गए हो ना कि असल कलर यही है, जो आपका स्किन का कलर है वो असल कलर नहीं है, जो हमारा है वही असल है।
इतने पैसे खर्च करते हैं, दुबई जाते हैं,
हाँ
है,
दुबई कतर बारेन
जुमेरा बीच जाते हैं,
हाँ
फिर जाके वहाँ अपना ये जो कलर है इसको टैंड
हमारे जैसा करते हैं।
बाय डिफॉल्ट हमारे पास सारे पुरजे बाय डिफॉल्ट लगे हैं,
बिल्कुल उनको समझ आ गई है कि जो इनकी स्किन का कलर है ना असल कलर यही है,
मेरा
जो है ना, हाँ साडा
अच्छा आपका कलर,
हाँ उनका जो है वो गलत है, फेक सा है, जो चिट्टा सा है ना वो फेक है। और देखो जरा दुनिया पाकिस्तान में हमारी कितनी पागल हुई हुई है, वो विटामिन सी के वो जो है वो ड्रिपें लगा लगा के और चिट्टा रंग कर रहे हैं।
जी बड़ा फैशन है इस पे, हाँ? प्रोग्राम करेंगे, मैं हाँ? सोच रहा था
रंग तो इतना बुरा रंग कर रहे हैं अमीर
पाकिस्तानियों को हो क्या गया।
मैं अब नेक्स्ट टाइम जाऊंगी ना पाकिस्तान तो मैं जब वापस आऊंगी तो मुझे कहोगे ये गोरी कहां से आई है, मैंने इतना रंग गोरा करा लेना है अपना, बिल्कुल वैट हो जाऊंगी मैं, देख लेना।
ये भी एक ट्रेंड है आज, हाँ मैं सोचता हूँ
बड़ा मुझे शौक है गोरा होने का।
अल्लाह सबको हिदायत दे, अपने ईमान में रखे।
हाँ और नहीं नहीं मुझे गोरा होना है, मुझे नहीं ऐसा ये कलर
अच्छा गोरा होना है,
हाँ बिल्कुल मुझे
तो चलिए वो आजकल तो क्यों वो इंजेक्शन लगा लेते हैं
संगे मरमर के जैसे गोरा,
उससे क्या होगा,
उससे हम गोरे हो जाएंगे, हमारा शुमार भी गोरों में होगा, हम फिर बाल भी गोल्डन कर लेंगे और मैं अपना नाम शेज कर लूंगी।
अच्छा शेज,
हाँ शेज, देन एवरीबडी विल कॉल मी शेज,
क़यामत की निशानी है।
अच्छा अच्छा
ख्याल रखें, इसीलिए पाकिस्तान तबाह हो रहा है।
नहीं नहीं कनाडा तबाह हो रहा है,
नहीं हम वहां से तो करके आए ना,
हाँ
अब अपने बीज यहाँ बो रहे हैं,
हाँ अब इसको भी करेंगे तबाह,
या अभी अगले 30-40 सालों में जो है वो
बिल्कुल पूरी तरह बर्बाद करके यहाँ से भी निकलेंगे, उससे पहले नहीं हम जाएंगे इस प्यारे मुल्क से।
नहीं आएंगे, एक छोटी 30 सेकंड के लिए कॉल लूंगा सर, ज्यादा लंबा नहीं है, टाइम कम है हमारे पास, 30 सेकंड आपके पास है, देखिए हमारे साथ कोई कॉलर कुछ कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम शेज एंड एम साहेब।
अरे कैसे हैं सर जी, आज तो कुछ गलत नहीं कहा।
नहीं नहीं आज तो आप बिल्कुल पटरी के ऊपर रह के बातें कर रहे हैं।
मैं सर जी मैंने
आपके डाले से डर गया,
मुझे समझ आ गया था कि ट्रेन से पटरी पे चलती है।
देखो आज तो नाम भी चेंज हो गए हैं
सर, क्या चीज होना, हालात ही चेंज।
पटरी पर रहोगे तो मुझे कॉल की जरूरत नहीं कर।
नहीं सर मुझे पता चल गया कि ट्रेन जो है वो पटरी पे ही चलती है, पानी पे नहीं।
अल्लाह अकबर।
तो अब खास साहब आपको शिकायत नहीं मिलेगी, यकीन करें।
नहीं नहीं मैं इसीलिए बीच में कॉल कर लेता हूँ कि मैंने कहा चलो जरा पटरी पर रहो तो सही है ना।
नहीं सर मुझे अंदाजा होता है कि आप कहीं ना कहीं जो है ना वो
फिक्र रहो, मेरी फोकस आपके ऊपर ही रहती है।
सर पूरा जमाना चांद को देख रहे हैं आप अकेले।
देखो जी
चांद मेरी जमीन चांद मेरा,
मैं इसी चांद की बात कर रहा हूँ।
लगन जी के दिल को बात लग गई है समझ कर।
फिर कहता है मैं तो अपनी तारीफ करता नहीं, दुनिया मेरी तारीफें करती है।
मैंने
मेरी सुरीली आवाज, मैं चांद, मैं खूबसूरत आदमी।
ये देखो आज इनकी जो चली मिली खाई है ना, देखिए 25 साल की उम्र पे आ गया वापस ये।
हाँ जी बिल्कुल,
तो इसको बड़ा नहीं बोलना,
नहीं नहीं
करना है, चालीस से नीचे रखना है।
बिल्कुल
गला खराब हो गया शरीर के सब का।
राजा पास ऐसे क्या कहते हैं ना, 2000 डिस्काउंट उठा लेते हैं ना, हमारी लॉटरी निकलती है ना, मिलियन मिलेगा।
नहीं नहीं लॉटरी तो निकलेगी नहीं कदे, सारी जिंदगी सर अभी भुखे गरीब फकीर मरांगे इसी तरह।
मिलियन डॉलर दिया,
सोच रहे आप, हम तो इस शौक में आए थे कनेडा के, शायद मिलियन डॉलर निकल आए, लेकर नहीं जी नहीं, इतने भी ऐसी भुखा नंगा और शोधा ही रहना है।
सर बहुत शुक्रिया खान साहब, अभी प्रोग्राम हमें लियाकत भाई का लगाना है, तो बहुत शुक्रिया, फिर आपसे बात होती है इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, तमाम सामईन का और नाजरीन का बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने का। अब बस टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद लियाकत मलिक साहब अपनी गाड़ी लेके बाहर खड़े हैं और उन्होंने ऑफिस में एंटर होना है, और भूली बिसरी यादें आपके लिए प्रोग्राम लेकर आएंगे। 7:30 बजे तक आप सुन सकेंगे, ई आवाज टीवी पर देख भी सकेंगे, और रात ये ई आवाज टीवी पर 11 बजे रिपीट भी होगा। शर जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने का, जुड़ने के लिए, और एज यूजुअल इंशाल्लाह जिंदगी रही और आप जिंदा रहीं। تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. تمام سامعین بہت شکریہ ہمارے ساتھ ایسے جڑے رہیے نا. ابھی ہم جا رہے ہیں لیکن لیاقت بھائی آ رہے ہیں, تو آپ نے کہیں نہیں جانا. بھولی بسری یادیں پروگرام لے کر لیاقت ملک صاحب شامل ہیں. فی الحال مجھے عامر احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی اور صحت رہی, تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم.
ایپل اسٹور کوڈ پاکستان استعمال کرنے پہ آپ کو ملے $10 کا کیش بیک. اپنے فون سے براہ راست بینک اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنا شروع کریں منٹوں میں اور بنا کسی فیس کے. لیمفائی
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ. ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ $60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ $12,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $60,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟੈਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ BC ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 647-769-0241 647-769-0241.
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है.
मेरी सेविंग $350.
मेरी सेविंग सिर्फ $100.
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है. मैंने सेव किए हैं $1,775.
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुड़ सिखाओ ना.
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियाँ और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है. और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने. आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं. टर्म एंड कंडीशन अप्लाई. ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 647-290-3773
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो. ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो. ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब. लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी. आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी. एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी. क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप. 519-622-0660 या quicktrucklube.com. QTL because we care.
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है.
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो.